ये जो विषय है अध्यात्म विद्या, मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में महाराज के ग्रंथ में जो वाणी आई है, उस वाणी को पहले हम श्रवण करें, उसके पश्चात इस पर विचार होगा। धर्म के साधन कारने कारज पढ़न का होए, मंगत साधन यूं करे हृदय हरि परोए। वैर बदी तिस निकट ना, जिस ध्याया रछ पाल, श्वास श्वास सिमरन किया, छाड़ कूड़ जंजाल, केवल पढ़ने ना मिला, वेद ग्रंथ का मूल, पढ़ सुन जिस मन माने या, परखी गत अनुकूल, भोले भाले जगत में जिन पाया हर नाम, वेद खड़ा तिस द्वार पर, जहां बसे निश काम, वेद पढ़न का सार ये, घट घट जान निरंकार, इस विध विरति जिस पाई, तिस साधन गुणकार। पढ़ने तो दोनों गए, वशिष्ठ हरणाकश राय, एक तो ब्रह्म वेता बने, एक नख स्यों पेट फड़ाए, बुद्ध अनुकूल है पढ़ना, जेई बुद्ध तया जाप, निर्मल बुद्ध विरले भई, गया दुर्मत का ताप, असंख वरख पढ़ता रहे, धारे मन में मान, अमृत को नित भिख करे, उल्टी बुद्ध ये जान, वेद कतेब का मूल है, अक्षर एक ओंकार, शिव सन का दिक ध्याव दे, उतरस मन मद छार, वक्त जात है बाबरे, रास्ता है बहु दूर, अटपट औखत घाट है, चढ़कर होए मनु, मनूर जेता पढ़ना नर पढ़े एता मन दुख पाए अनक सिद्धांत महा भर मत फिरे थोर हाथ ना आए पढ़ना एको नाम का और पढ़न दे त्याग मंगत निश्चल चित होवे प्रेम हरि रस लाग पढ़ना एको नाम का और पढ़न दे त्याग मंगत निश्चल चित होवे प्रेम हरि रस लाग।
गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं 10वें अध्याय में अध्यात्म विद्या विद्या नाम अहम् अर्थात विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। अर्थात जिस मनुष्य के अंदर अध्यात्म विद्या है वहां मेरा प्रकाश है, वहां मैं उपस्थित हूं। तो जितनी भी विद्याएं हैं संसार में, जितनी भी हम साइंस जानते हैं, जितना भी ज्ञान जानते हैं, उसमें सर्वोच्च यदि कोई विद्या है, सर्वोच्च कोई विज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान है, वो अध्यात्म। महर्षि रमण, उनके जीवन में एक शिष्य के साथ वार्तालाप आता है, उसका वो प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। वहां पता लगता है कि देखो महर्षि रमण भी क्या कहते थे। जैसा कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वही निर्णय महर्षि रमण का था। जो ज्योतिष विद्या है इसकी एक बड़ी कठिन शाखा है जिसको प्रश्न करके कहते हैं। इसमें जो ज्योतिष होता है, जो ज्योतिषी होता है, जो इस विद्या को जानता है और जो प्रश्न करता है, जिसके बारे में वो भविष्यवाणी करता है, तो जो प्रश्न करता है उसके प्रश्न का जो पहला अक्षर क्या है, उसका नाम क्या है, जिस समय प्रश्न पूछ रहा है उस समय उसकी डायरेक्शन क्या है, किस स्थान से वो आया है, इस प्रकार कुछ और छोटी मोटी डिटेल्स जब उसके सामने ज्योतिष सामने रखी जाती हैं, तो वो मन में ही उसका हॉरोस्कोप, उसकी कुंडली तैयार कर लेता है और कुछ सेकंड में ही वो भक्ति भाव से मौन होकर प्रतीक्षा करता है उसके उत्तर की। तो अंदर से जो उसको उत्तर मिलता है वही वाणी के रूप में उसका वो उत्तर बाहर आता है। तो ये उत्तर बाहर इतना सटीक होता है कि इसमें गलती की कोई संभावना नहीं। तो एक व्यक्ति था, महर्षि रमण का वो शिष्य हुआ है, उनका नाम था शास्त्रीगल मामा। ये तिरुवनमलाई में, जहां तमिलनाडु में है, वहां के ये महर्षि रमण थे। तो एक बार क्या हुआ, ये शास्त्रीगल मामा अपनी पूजा में व्यस्त थे, तो एक व्यक्ति आया उनके सामने, नागप्पा नाम का। उस समय वो पूजा कर रहे थे तो उनकी पत्नी उसका मैसेज लेकर आई कि नागप्पा आया है और वो आपसे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वो जल्दी में। तो शास्त्रीगल मामा ने सोचा कि मैं पूजा तो छोड़ नहीं सकता, तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने वहीं उनको कुछ डिटेल्स बताई उसके बारे में। तो दो चार सेकंड के गैप के बाद वो पत्नी को कहने लगे कि देखो ये जो व्यक्ति आया है इसकी हीरे की अंगूठी खो गई है, उसके बारे में जानने के लिए आया है। और उसका जो शक है अपने नौकर पर है कि उसने उसकी अंगूठी ले ली, उससे कहो कि जिस बाग में वो कपड़े धो रहा था, जहां वो कुआं था, कपड़े धोते समय उसकी उंगली से वो अंगूठी निकल गई थी, उसके बराबर में दो केले के पेड़ हैं, वो वहां पास में ही पड़ी। खैर, वो बात तो सत्य थी उसकी, कोई बात नहीं। एक दिन इसको पता लगा महर्षि रमण के बारे में, चांस की बात थी, उनका फोटोग्राफ भी इसको देखने को मिला। जब उसने फोटोग्राफ देखा तो इसके मन में एक आकर्षण पैदा हुआ कि महर्षि रमण के पास में चलता हूं, उनसे मैं मिलता हूं। तो महर्षि रमण उस समय अरुणाचल हिल पर जो स्कंद आश्रम है, गुफा है, वहां पर वो रहा करते थे। तो उनके पास वो चला गया। इसकी विद्या जो जानता था, इससे बड़ी अच्छी कमाई थी, और बड़ा फेमस आदमी था। जब महर्षि रमण से सारी बातचीत हुई तो इसका अंदर से मन करने लगा कि मैं क्यों ना महर्षि रमण के पास ही रह जाऊं। लेकिन बीच में बाधा क्या थी, इतना जो नाम था, इतना जो पैसे की कमाई होती थी इस विद्या के कारण, तो उसके मन में आया कि ये मैं कैसे छोड़ूंगा। तो उसने महर्षि रमण से एक प्रश्न कर दिया, महर्षि एक चीज बताई, जितनी भी विद्या संसार में प्रसिद्ध है, जितना भी विज्ञान प्रसिद्ध है, क्या उसमें सबसे श्रेष्ठ ये ज्योतिष विद्या नहीं है? अब देखिए महर्षि रमण क्या कहते हैं। वो कहते हैं, संसार में सब विद्याओं से श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या है। महर्षि रमण का बस इतना सा ही उसने उत्तर सुना, वो वापस अपने स्थान पर गया और अपनी पत्नी को राजी किया, और पत्नी और वो स्वयं दोनों ने महर्षि रमण के आगे समर्पण कर दिया। सारी जिंदगी वो वही थे। तो जो बुद्धिमान है वो सत्पुरुषों के निर्णय को एक बार में स्वीकार कर देता है। तो गीता में जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम अहम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं, ये कोई ऐसी ही बात नहीं। जहां वास्तव में अध्यात्म विद्या है जिसके अंदर, वहां प्रभु विद्यमान है, उनकी कृपा वहां पर अवतरित है। लेकिन हम जो समझते हैं कि अध्यात्म विद्या का मतलब कोई किताबी ज्ञान होगा, कि वेद पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, शास्त्र पढ़ लिए, अध्यात्म विद्या का ज्ञान मुझको। लेकिन गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, देखिए, तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। अर्थात निरंतर मुझ में मन लगाए हुए उन प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप बुद्धि योग देता हूं, जिससे वे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो निरंतर जो जीव, जो मनुष्य प्रभु की भक्ति करता है, अंदर अपना मन उसमें लगाए रखता है, उसको प्रभु वो तत्व ज्ञान रूप बुद्धि योग देते हैं। इसका मतलब ये विद्या आंतरिक है, ये प्रभु कृपा से ही अंदर अवतरित होती है, और उसके आधार पर ये जीव उस ईश्वर का दर्शन करने में समर्थ होता है। तो आगे वो क्या कहते हैं, वो अगले श्लोक में, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशयामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात उन पर कृपा करने के लिए ही मैं उनके अंतःकरण में स्थित हुआ तत्व ज्ञान रूप प्रकाश से अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करूंगा। यहां भी अंदर की ही बात आ रही कि उन पर कृपा करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में स्थित हुआ, तो वो अंतर्यामी है, वो अंदर ही स्थित है। तत्व ज्ञान रूप प्रकाश से अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कर। तो जो निरंतर भजन करते हैं प्रभु का, उनके अंदर ये अध्यात्म विद्या अवतरित होती है। इसलिए वाणी जो अभी सुन रहे थे वहां आया है, भोले भाले जगत में जिन पाया हर नाम, वेद खड़ा तिस द्वार पर जा बसे निष्काम। कि इस जगत में जिन्होंने हरि नाम पा लिया, अंदर नाद रूप परमेश्वर का अनुभव अंदर कर लिया, जिसको हम ओम करके कहते हैं वही इस जगत में भोले भाले लोग। और वेद खड़ा तिस द्वार पर जा बसे निष्काम, जिनका मन बिल्कुल निष्काम हो गया है, जहां संसार की कामना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई है, कहते हैं वेद तो उनके द्वार पर खड़ा हुआ है। अर्थात अंदर से ही सारा वैदिक ज्ञान उनका बाहर निकलता है, बाहर की कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं। इसीलिए ऋग्वेद में भी आता है कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा आदि विश्व निषेधु यस्तन्न वेद की मृचा करशति या इत्तद विदुष इमे समाज। अर्थात ऋचाओं के परम अक्षर ओम को, जिसको नाद ब्रह्म कहते हैं, ऋचाओं के परम अक्षर ओम को जिसमें सारे देवता निवास करते हैं, जिसने उस ओम अक्षर को नहीं जाना, उसने वेदों को पढ़कर क्या किया। यस्तन्न वेद की मृचा करश्य, उसने वेदों को पढ़कर क्या किया। तो वेदों का यदि कोई अध्ययन भी करता है तो वैदिक ज्ञान धारण करने का उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ओम को जानने का उद्देश्य होना। वो नाद रूप परमेश्वर जो अंदर विद्यमान है, मेरे रोम रोम में रमा हुआ है, मेरी उससे भेंट हो जाए। तो ये विद्या अंदर जाने वाली विद्या, उस प्रभु से भेंट करने वाली विद्या। तो यहां जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उन पर कृपा करने के लिए ही मैं अंतःकरण में स्थित हुआ, तत्व ज्ञान रूप प्रकाश से अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि फिर इसका मतलब ये हो गया कि शास्त्र पढ़ने का, वेद पढ़ने का कोई लाभ ही नहीं है क्या। तो इनको पढ़ने का लाभ यही है कि इनके द्वारा दो चीजों का पता लगता है कि जिसकी वो तत्व ज्ञान रूप प्रकाश क्या है और ये अज्ञान रूप अंधकार क्या है जो प्रभु कृपा से नष्ट होता है। तो जिस विद्या को पढ़ने से मुझको ये ज्ञान हो जाए कि वो तत्व ज्ञान रूप प्रकाश क्या है और ये अज्ञान रूप अंधकार क्या है, इसका ज्ञान हो जाए और इस अज्ञान रूप अंधकार को खत्म करके मैं उस तत्व ज्ञान रूप प्रकाश को अंदर कैसे प्राप्त कर लूं या उस ईश्वर की तरफ कैसे अग्रसर हो पाऊं, वो साधन मुझको पता लग गया है उस पढ़ाई के द्वारा। बस इतना ही अध्यात्म विद्या का आपके जीवन में महत्व। वास्तविक जो अध्यात्म विद्या है वो प्रभु कृपा से अंदर उसका बोध होता है, वो पढ़ाई से वो चीज कभी नहीं आ सकती। तो अब अध्यात्म विद्या जो हम शास्त्र पढ़ के सीखते हैं तो उसके मुख्य अंग क्या है, उस पर थोड़ा थोड़ा विचार कर लें ताकि पता तो लगे आज इस सत्संग के माध्यम से कि अध्यात्म विद्या में क्या क्या चीजें आती है, हम उसे सीखते क्या है। तो सबसे पहला जो अध्यात्म विद्या का जो अंग है वो है मैं कौन हूं। अध्यात्म विद्या का जो प्रारंभ है वो यहां से होता है कि सबसे पहले वो विद्या ये सिखाएगी आपको कि तू है कौन, सबसे पहले ये जान। लेकिन मैं तो अपने आप को शरीर समझता हूं। तो अध्यात्म विद्या जब पढ़ते हैं या सत्संग श्रवण करते हैं या किसी सत्पुरुष से जब भेंट होती है तब वो हमारे दो भाग कर देता है, एक जीव जो इस शरीर में जी रहा है, जो इस शरीर का उपयोग कर रहा है अपने वास्ते, और दूसरा शरीर। तो इस शरीर से कर्म करके, इस शरीर से व्यवहार करके जो कुछ भी मैं प्राप्त करता हूं या खोता हूं उसके द्वारा मुझको सुख पहुंचता है या दुख पहुंचता है। तो इस शरीर के माध्यम से जो सत्ता सुखी हो रही है या दुखी हो रही है वही तो मैं हूं। तो अध्यात्म में मुझको जीव कहा जाता है, जो शरीर में जी रहा है, जो शरीर के द्वारा सुख और दुख अनुभव करता है। तो जीव का संबंध सुख दुख के साथ है और शरीर का संबंध कर्म के साथ है। तो मैं गलती क्या करता हूं, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं, सारे शरीरधारियों के बीच में मैं पला हूं, उन्हीं के बीच में सारा मेरा व्यवहार होता है, तो इसलिए मैं भी उन्हीं की तरह यही सोचता हूं कि मैं शरीर। अब कैसे हम पता लगाएं कि मैं शरीर हूं या जीव हूं? तो बड़ी एक छोटी सी बात है जो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं बैठे बैठे यहां पर। देखिए, यदि मैं शरीर हूं तब शरीर यदि मेरा सो जाए तो सारा बोध मेरा खत्म हो जाना चाहिए, सारे सुख दुख से मेरा संबंध टूट जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। रात्रि को हम जब सोते हैं, नींद जब कच्ची होती है, उस समय शरीर का होश हमको नहीं होता, कहते हैं सो रहा, लेकिन हम जानते हैं कि उस समय मैं स्वप्न देख रहा होता हूं। और स्वप्न की प्रक्रिया क्या होती है वो ही हम जानते हैं। मेरे मन में जो संकल्प उठते हैं, जो संस्कार भरे पड़े हुए हैं, वही स्वप्न के रूप में मेरे सामने आ जाते हैं, और उस स्वप्न की रचना के द्वारा मैं सुख भी महसूस करता हूं, दुख भी महसूस करता हूं, चिंता फिक्र भी महसूस करता हूं, भय भी मुझको लगता है, कई बार हंसता भी हूं, रोता भी हूं। अब यहां विचार करने की बात यह है कि यदि मैं शरीर हूं तो शरीर जब यह सो गया, फिर ये सुख दुख, मान अपमान, भय, चिंता, ये स्वप्न के माध्यम से कौन कौन अनुभव कर रहा है? तो इस शरीर से संबंध टूटने के बाद भी मैं सुख दुख का अनुभव कर रहा हूं। इसीलिए सत्पुरुष कहते हैं कि यदि तुम इसके बारे में नहीं सोचोगे तो कभी भी इस निर्णय पर नहीं पहुंचोगे कि मैं जीव हूं। जो सदैव जीवित रहता है उसकी मृत्यु नहीं होती। मैं शरीर नहीं हूं जो सदैव घटता बढ़ता रहता है, जो मृत्यु को प्राप्त। तो अध्यात्म विद्या का जो सबसे पहला अंग है वो है मैं कौन, क्योंकि इसके बिना तो आप अध्यात्म विद्या सीख ही नहीं सकते। शरीर कोई विद्या नहीं सीखता, सारी विद्या जीव ही सीखता है। तो अब अगला जो प्रश्न ये उठता है, ये जो जीव है इसको महाराज जी बुद्धि करके भी कहा करते हैं, जीव यानी बुद्धि, जो इस सुख दुख का अनुभव कर रहा है और मन की गति को समझ रहा है। जैसे कि मैं यदि 5 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाऊं, मुझसे कहा जाए कि आपने सोचना कुछ नहीं, आपने सोचना कुछ नहीं, केवल 5 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाओ, तो आप सभी के लिए यह असंभव कार्य होगा कि मौन होकर बैठ जाएं और सोचे कुछ। आप कहेंगे मैं क्या करूं, मेरा तो बस नहीं चलता, मन में कोई ना कोई विचार आ रहा है, मन में एक विचार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता रहता है, लगातार आता रहता है। इसको अध्यात्म में संकल्प करके कहते हैं, संकल्प विकल्प। तो जो मन में संकल्प विकल्प आपके उठ रहे हैं, इनके कारण ही मैं परेशान होता हूं, चिंतित होता हूं। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि आपके अंदर जो वासना है, जिसको इच्छा करके कहते हैं, वो इच्छा जब उठती है तो उस इच्छा के साथ आप सब जानते हो कि किसी के मन में एक इच्छा उठ गई कि मैंने पिक्चर देखने जाना है, तो संकल्प आते ही सारा प्रोग्राम के संकल्प विचार उठने लगे, कौन सी पिक्चर अच्छी चल रही है, किस हॉल में चल रही है, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी है, टिकट की व्यवस्था करनी है, परमिशन लेनी है, पूरी पूरा जो है वो भंडार खुल जाएगा विचारों का, एक संकल्प के आगे, एक इच्छा के जागृत होती। तो ये जो इच्छा है जो आपके अंदर जागृत हुई है, और इच्छा के कारण जो विभिन्न प्रकार के विचार जागृत हो गए हैं, ये आपको चैन दे रहे हैं या बेचैनी दे रहे हैं? इतना तो हम सभी सोच सकते हैं, अच्छी तरह विचार कर सकते हैं। एक इच्छा जागृत होने के पश्चात उसके सारे जो प्रोग्राम बनते हैं, जब तक वो इच्छा पूरी ना हो जाए आपकी बेचैनी बढ़ी ही रहती, चैन नहीं देती कभी। अब ये जो मन के कारण आपके अंदर बेचैनी पैदा होती है, इसी को भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं पिछले जो श्लोक में कहा गया कि इसी को अज्ञान रूप अंधकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीव यह समझ रहा है कि इच्छा जो उठी है वो पूरी हो जाएगी तो मुझको सुख मिलेगा, जबकि सत्य आपके बारे में यह है, मन में इच्छा का उठना यह शो करता है कि आपके अंदर कोई कमी मौजूद है, उस कमी के कारण आपके अंदर इच्छा उठ रही है। तो जब उस कमी को आप संसार में पूरी करने की कोशिश करते हो तो वो अन्य इच्छाओं को जन्म दे देती है, इसीलिए आपके जीवन में कमी और बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे मनुष्य संसार में विकास करता है, एजुकेशन के बारे में, पैसे के मामले में, संसारी साजो सामान के मामले में, संसार में आगे बढ़ने के मामले में, उसका मानसिक तनाव धीरे धीरे बढ़ता रहता है, उसकी बेचैनी बढ़ती रहती है। यही कारण है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं रहता, उसके अंदर ये पांच विकार बढ़ जाते हैं, इसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं। इसीलिए जैसे जैसे संसार में आप देख रहे हैं एजुकेशन की उन्नति हो रही है, आर्थिक उन्नति हो रही है, साजो सामान की उन्नति हो रही है, उसी अनुपात में मनुष्य का चरित्र गिरता चला जा रहा है, मनुष्य के अंदर बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। तो इसी को अज्ञान अंधकार कहा गया है। तो इस अज्ञान अंधकार से मुक्त होने के लिए यह अध्यात्म विद्या है, ये ईश्वर की भक्ति है। तो यह प्रोग्राम शरीर के लिए नहीं है, यह प्रोग्राम मेरे लिए है, अर्थात जीव के लिए। तो जीव को यह पहले समझना है कि शरीर तो बड़ा पीछे छूट गया, शरीर और मेरे बीच में मन भी तो खड़ा हुआ है, मुझको तो सबसे पहले मन परेशान करता है। मन के अंदर जो संकल्प उठता है, जो इच्छा होती है, उसकी पूर्ति के लिए मैं शरीर का उपयोग करता हूं। इसका मतलब शरीर क्या है? मात्र एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से है, एक मशीन की तरह से है, जिसके द्वारा आप अपने मन की डिजायर पूरी करते हो। तो है तो शरीर मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक साधन है, और मैं इसको अपना स्वरूप समझकर जी रहा हूं, इसीलिए हमको अज्ञानी कहा जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया कि अज्ञान रूप अंधकार को मैं अहम अज्ञान जम तमाह, इस अज्ञान रूपी अंधकार को मैं दूर करता हूं, किसके द्वारा? तत्व ज्ञान रूप प्रकाश के द्वारा। तो ये तत्व ज्ञान रूप जो प्रकाश है, जिसको हम ईश्वर करके भी जानते हैं, चेतन सत्ता करके भी जानते हैं, चेतना करके भी जानते हैं, तो ये जीव इस मन के अंधकार से मुक्त होकर इस जीव के ऊपर जो चेतन सत्ता है उसकी ओर ये अग्रसर होता है, वहां जाकर इसके अंदर वो उजाला पैदा होता है, शांति पैदा होती है, आनंद पैदा होता है, और पूर्ण संतोष की इसको प्राप्ति। तो उसके लिए अगला जो सूत्र है अध्यात्म विद्या का, वो है पुनर्जन्म और प्रारब्ध। तो वो गीता में क्या कह रहे हैं पुनर्जन्म के बारे में, देखिए भगवान कृष्ण, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे अर्जुन, अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि सदा उसी भाव से भावित रहा है। जीवन भर जिस प्रकार के विचार, जिस प्रकार के संस्कार, जिस प्रकार का स्वभाव मैंने बनाया है, अंत के वक्त में उसी स्वभाव के अनुसार मैं संकल्प करने को मजबूर किया जाता हूं, ये प्रक्रिया ऐसे ही होती है मरते वक्त, जैसे कि स्वप्न के समय प्रक्रिया होती है। कोई व्यक्ति स्वप्न जानकर सोच सकता है क्या? अपने स्वप्न की रचना खुद जानकर बना सकता है, बुद्धि से बना सकता है? नहीं, वो ऑटोमेटिकली होता है। जैसे मन में संस्कार हैं, जिन संस्कार को लेकर आप सोए हो, उन्हीं संस्कारों के अनुसार आपके स्वप्न की रचना होती है। ठीक उसी प्रकार जो आपने जीवन भर संस्कार बनाए हैं, उसी संस्कार के अनुसार आपके नए शरीर की रचना हो जाती है। महाराज जी की वाणी में भी यही बात आती है, तो जो गीता में आ रही है महाराज जी की वाणी में आ रही है, कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूट न पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। सीधा था सिद्धांत। तो यह पुनर्जन्म का सिद्धांत, तो पुनर्जन्म जीव का नहीं होता, मैं जीव हूं। पुनर्जन्म इस शरीर का होता है जो मशीन है, मैं वही रहता हूं, शरीर बदल जाता है। तो इसीलिए जीव के लिए कहा जाता है, तो इस परिवर्तनशील शरीर के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये तो आज नहीं तो कल छूट जाना है। अरे जो अंतर्यामी परमेश्वर जो परमानेंट है, तू खुद भी तो परमानेंट है, तेरा ईश्वर भी परमानेंट है, तो उसकी ओर क्यों नहीं चलता? अरे जो उसकी ओर चला, उसके अंदर तो सारा वेद ज्ञान, अभी वाणी सुन रहे थे कि वेद खड़ा किस द्वार पर, वेद तो उसके द्वार पर खड़ा होता है, उसके अंदर सारा ज्ञान आ जाता है, बिना पढ़े लिखे आ जाता है। तो इसीलिए ये पुनर्जन्म का सिद्धांत ये जो अध्यात्म विद्या का मुख्य अंग है, और इसके साथ प्रारब्ध कि जो कर्म आपने कर लिया वो कभी भी खत्म, उसका फल कभी भी खत्म नहीं होता। ये शरीर मिट भी जाए तब भी वो प्रारब्ध तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो कर्म फल तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, नए शरीर में पहुंचकर उसको तुझे भोगना पड़ेगा। अब देखिए अयोध्या कांड में एक प्रसंग आता है, जहां जब भगवान राम को वनवास हो गया, भरत अपनी ननसाल गए हुए थे, वापस लौटा है, वहां राम के वियोग में राजा दशरथ की भी मृत्यु हो गई। अब भरत बड़े परेशान है, तो एक दिन वशिष्ठ मुनि समय निकालकर उनके पास आए, अब भरत को समझा रहे। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेउ मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। कि हे भरत सुनो, कि भावी अर्थात प्रारब्ध बड़ा प्रबल है, कि हानि लाभ, जीना और मरना, यश और अपयश, ये सब विधाता के हाथ में, और विधाता वो कौन है? जो मेरा मालिक है, जिसने मेरे इस शरीर की रचना की है और इसको प्रारब्ध दिया है, प्रारब्ध का पैकेज दिया है। मेरा जो जीवन चलता है उस प्रारब्ध के अनुसार चलता है। कहां मेरी शादी होनी है, किससे होनी है, ये प्री डिसाइडेड है, हमको नहीं पता, लेकिन उधर से प्री डिसाइडेड। तो जो ईश्वर विश्वासी है वो तो जानता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस के जब विवाह छोटे से थे, वो तो 18 साल के थे, तो माता पिता बड़े परेशान थे, लेकिन बचपन से ही वो उनके अंदर ईश्वर भक्ति थी, वो सिद्धियां थी उनके अंदर, तो उनका माता पिता बड़े परेशान हो रहे हैं, चलो मैं बता ही देता हूं कि मेरी शादी कहां होगी। उस समय शारदा माँ 6 साल की थी, उन्होंने बता दिया कि उस गांव में वो लड़की है, उससे मेरा विवाह होना है। माता पिता गए, शादी पक्की कर आया, विवाह भी हो गया। तो जो महापुरुष है उनको तो पता है, हमको पता नहीं, अंतर इतना ही, लेकिन प्रारब्ध अपनी जगह बिल्कुल अटल है। महर्षि रमण कहते थे कि जिस कार्य को करने के लिए यह शरीर पैदा हुआ है, वो सारे कार्य इस शरीर को करने होंगे, तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू युद्ध करना चाह या ना चाहे से क्या अंतर पड़ता है, तेरा जन्म युद्ध करने के लिए हुआ है, ये युद्ध ऑलरेडी हो चुका है, ये तेरे शरीर को करना ही पड़ेगा, इसलिए तू मेरी आज्ञा में रहता हुआ इस युद्ध को कर, इसको कहते हैं प्रारब्ध। तो हम जो चिंता युक्त रहते हैं, इस कारण से रहते हैं कि कि हमको प्रारब्ध पर विश्वास नहीं है, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं, और हम अपने आप को शरीर करके समझते हैं। तो ये जो सूत्र है पुनर्जन्म और प्रारब्ध का, ये आपके इस बंधन को काटने के लिए, इसको जानना और इस पर विश्वास करना जरूरी है। इसलिए अध्यात्म विद्या का ये मुख्य अंग है। अब इन दो बंधनों से छूटे कैसे, शरीर के बंधन से, इस पुनर्जन्म प्रारब्ध के बंधन से, इसके लिए दो मुक्ति के मार्ग हैं, वो दो अंग अध्यात्म विद्या के अगले हैं। उसमें पहला अंग है सिमरन। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि जब ये प्रारब्ध से बंधा हुआ है तो वो कहते हैं इसे छूटेगा कैसे फिर? वो कहते हैं कि तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध चा मई अर्पित मनोबुद्धि मामेव एष्यसि असंशय। हे अर्जुन, इसलिए तू निरंतर मेरा स्मरण कर, तू निरंतर मेरा सिमरन कर और युद्ध भी कर, युद्ध चा और युद्ध भी कर, मेरे में अर्पित अपनी मन बुद्धि के कारण, उसका मन और बुद्धि ईश्वर के अर्पित है तभी वो हर समय याद कर सकता है उसको। तो मेरे में अर्पित मन बुद्धि के कारण निश्चय ही तू मुझको प्राप्त होगा। अब कर्म कहां बाधक है भक्ति के अंदर? अरे अर्जुन को तो युद्ध जैसे भयंकर कर्म में कृष्ण प्रेरित कर रहे हैं। तो सिमरन जो है ये बिना ईश्वर प्राणता के, बिना मन बुद्धि को ईश्वर के अर्पण किए हुए ये सिमरन हो ही नहीं सकता। तो युद्ध अर्जुन कर तो रहा है लेकिन कृष्ण के हुक्म में कर रहा है कि ये युद्ध करने वाले प्रभु हैं, मैं नहीं हूं करने वाला, ये तो मात्र इंस्ट्रूमेंट है जो प्रभु बैठे बैठे इसको यूज कर रहे हैं। तो कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता परमेश्वर, और वो परमेश्वर इस शरीर के प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर को संसार में घुमाता है। तो ये ज्ञान जब इस जीव के अंदर रहता है, इस मनुष्य में रहता है और इस ज्ञान को रखकर कर्म करता है तो उसको 24 घंटे ईश्वर की याद आती ही आती। इसीलिए जो अगला सूत्र है, चौथा सूत्र है, वो है समर्पण। जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुर। हे अर्जुन, तू मेरे को अपने आप को समर्पित कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तूने जो अपने कर्तव्य कर्म समझ रखे हैं, जिसको धर्म करके जानता है, उस पर भरोसा छोड़ दे। तू मैं जो कह रहा हूं वही तेरा कर्तव्य है, तू मुझको मेरे ऊपर समर्पित हो जा, मेरी शरण में आ जा। यदि तू मेरी शरणागत होता है तो मैं तुझको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। वो पाप क्या है? ये मन और शरीर, यही तो पाप है तेरे। तेरे मन की हर सोच, शरीर का हर कर्म पाप रूप है। ये पुण्य रूप तभी बन सकता है जब तू उस ईश्वर का होकर उसकी याद में वक्त व्यतीत कर और शरीर से जो कर्म करने का मौका तुझको मिलता है प्रारब्ध के कारण, उसको ईश्वर आज्ञा में करने की कोशिश कर, बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिना किसी के दबाव में आकर, बिना भयभीत हुए। जो ईश्वर का होकर जीता है उसको काय का भय, वो किसी से नहीं डरता। मौत आ जाए तब भी नहीं डरता, वो जानता है कि अरे मौत तो है ही नहीं, शरीर नया दे देंगे प्रभु। जो मैंने जीवन प्रभु के लिए जिया है तो मेरा यदि काम पूरा नहीं हुआ इस जन्म में तो अगले जन्म में प्रभु मिलेंगे ही मिलेंगे, वो साधन भी देंगे और सहायता भी करेंगे। तो इसीलिए जो चौथा सूत्र है वो समर्पण है कि जब तक ये जीव का समर्पण पूर्ण नहीं होता वो ईश्वर की याद करने में सफल नहीं हो सकता। इसीलिए बार बार हम में से जो लोग ईश्वर का स्मरण करते भी हैं यही कंप्लेंट करते रहते हैं दसियों साल, क्या करें मंत्र तो याद करते हैं, बड़े प्रेम से याद करने की कोशिश करते हैं, मन के संकल्प छोड़ते नहीं। कभी बच्चों की याद आती है, कभी दुकान की याद आती है, कभी सर्विस की याद आती है, 50 चेतन है, कैसे ईश्वर की याद कर सकते हैं? ये जो अध्यात्म विद्या है जो खास खास अंग
जो मैंने आपके सामने रखे
इसी वास्ते रखे कि इसके अनुसार जब हम सोचते हैं तब एक दिन हमारी ये स्थिति आ जाती है जहां गीता में कहा गया कि वासुदेवः सर्वम्, कि जीव को जब अंदर उस वासुदेव का उस ईश्वर का ज्ञान होता है, उसका अनुभव होता है, उसके पश्चात चारों तरफ उसको वह ईश्वर नजर आता है। इसीलिए गीता में कहा गया अंत में, वो कहते हैं कि मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। सातवें अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार हर मोती के अंदर धागा पुरोया हुआ होता है, उसी प्रकार हर जीव के अंदर मैं पुरोया हुआ हूं। मेरे कारण ही वो माला बनी हुई है, मेरा जो शरीर रूपी माला है ये प्रभु के कारण खड़ी हुई है। धागा निकाल दिया जाए तो माला रहेगी क्या? मोती के होने के पश्चात वो माला नहीं रहेगी। तो प्रभु हम सब के अंदर उसी प्रकार पुरे हुए हैं जिस प्रकार मोती के अंदर धागा पुराया हुआ है माला का। तो वो प्रभु अंतर्यामी है और मेरे ऊपर है वो, और मेरे नीचे मेरा मन है और मन के नीचे शरीर है। तो मैं शरीर के रोग को समझूं और इसका इलाज करने के लिए मैं प्रभु की याद करूं, और जब याद करूंगा तो प्रभु का दर्शन अंदर होगा, तब जाकर पता लगेगा कि ये जो अध्यात्म विद्या थी ये वास्तव में अमृत विद्या है जिसने जीवन में अमृत दिया मुझको, और ये जो अर्थ वाली विद्या है ये तो जहर है जीवन के। इसका इतना ही उपयोग है कि तेरे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी कर दे। उतनी कमाई की जरूरत है, ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम कमाई को लक्ष्य बनाकर संसार में जीते हैं और सारा जीवन अपना बर्बाद करते हैं। तो अध्यात्म विद्या हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण खजाना है। इसको केवल पुस्तकों द्वारा नहीं सिखाया जाता, इसको सत्संग के द्वारा, सत्पुरुषों के जीवन के द्वारा और अंदर आध्यात्मिक साधना के द्वारा सीखा जाता है। पढ़ाई उसमें काम जरूर आती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो वहीं से मिलती है, लेकिन ऐसा ना समझें कि हम पढ़ के विद्वान बन जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण होगा ईश्वर की याद से, ईश्वर को जान। ओम ब्रह्म सत्य सर्व।